31 मई 2011 को एक बेगुनाह शिया नौजवान मुंतजर इमाम को नमाज मगरिब के बाद कराची की एक मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और एक टारगेट किलर के तौर पर मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गौरतलब बात यह है कि एक हाथ से माजूर शिया नौजवान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने 12 अफराद को टारगेट किलिंग में कत्ल किया है, जो कि SSP CID पुलिस है ने अपनी सफाकियत और तशद्दुद पसंदी में अपने करीबी हलकों में जो कि मशहूर है मुंतजर इमाम पर भी तशद्दुद की इंतहा कर दी, जिसका सबूत इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जून 2011 में एक अदालती हुकुम पर मुंतजर इमाम को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल कराना है और एक अदालती कमेटी की तश्कील है जिसकी जिम्मेदारी ये तय की गई कि मुंतजर इमाम पर होने वाले बेईमाना तशद्दुद की तहकीकात करे। वादे रहे कि मुंतजर इमाम पर यह तशद्दुद चौधरी असलम की कस्टडी में किया गया। अदालत की जानिब से इस मुकदमे के हुक्म को मिलने के बाद पैरवी करने वाले वकील मुख्तार अब्बास बुखारी और उनके सरपरस्त साथी अस्करी रजा और माजूर शिया नौजवान मुंतजर इमाम की यह पहली फतह थी जिसने चौधरी असलम और उसके मुतासिर पुलिस अफसरान साथियों पर बौखलाहट जारी कर दी और चौधरी असलम ने मुख्तार अब्बास बुखारी एडवोकेट और उसके सरपरस्त साथी अस्करी रजा को धमकियाँ देना शुरू कर दी। एडवोकेट मुख्तार अब्बास बुखारी ने कई मरतबा इस बात का बरमला इजहार मीडिया पर भी किया।
पुलिस दहशत गर्दों की आलाकार है, वो दहशत गर्द न शिया हैं न सुन्नी हैं।
23 जुलाई सन 2011 वो दिन था जब एडवोकेट मुख्तार अब्बास बुखारी को अदालत से वापसी पर नासबी दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया।
जो पुलिस ऑफिशियल्स अपनी FIR की बात करते हैं, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। जो मेरी इनके नवाजी से बात हुई है, इनके दोस्तों से बात हुई है और खुद मरहूम से जो मेरी बात हुई, तो आज से दो रोज़ पहले खुद आकिल साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ने इनकी आज से तकरीबन 5 रोज़ पहले मुसलसल रब्ता रहा इनसे, उसमें ये बताते रहे कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मुझे प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। तो पुलिस का ये दावा तो सरासर बेबुनियाद है। प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से अपनी नेगलिजेंस को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं।
मुख्तार अब्बास बुखारी की शहादत के बाद शिया लीगल एड कमेटी के तमाम तर जिम्मेदारियाँ अस्करी रजा के कांधों पर आ गईं। मुख्तार बुखारी की शहादत की FIR में SSP CID पुलिस चौधरी असलम को नामजद किया गया, लेकिन FIR चौधरी असलम के खिलाफ दर्ज ना हो सकी, जबकि चौधरी असलम ने इस बात का बदला लेने के लिए अस्करी रजा के खिलाफ कई झूठे मुकदमात कायम कर दिए और इसके जवाब में अस्करी रजा ने भी प्रेस क्लब पर रजाकाराना तौर पर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। चंद रोज बाद ही अदालत ने अस्करी रजा को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। ये एक और बुरी और बदतरीन शिकस्त थी जो चौधरी असलम के सामने आई। दूसरी जानिब चौधरी असलम अपनी बदतरीन शिकस्त को बुला नहीं पा रहा था और अस्करी रजा को कत्ल की धमकियां देने लगा। अक्टूबर में शिया माजूर नौजवान मुंतजर इमाम जैदी को अदालत ने 12 झूठे मुकदमात में से 11 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया। माजूर शिया नौजवान मुंतजर इमाम जैदी की 12 में से 11 मुकदमात में रिहाई ने अस्करी रजा को मिलने वाली धमकियों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी, मगर अस्करी रजा जो अपने फ़राइज और जिम्मेदारियों से कभी गफलत ना बरतता था अपने काम में मसरूफ रहा और बिलाखिर 31 दिसंबर सन 2011 की शाम को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके अस्करी रजा को भी शहीद कर दिया और इस तरह साल 2011 के आखिरी सूरत के गुरूब के साथ एक और शिया नौजवान शहीद अस्करी रजा भी गुरूब आफ्ताब के साथ गुरूब हो गया और हमसे पिछड़ गया। आइए इस पूरे मंजरनामे को देखिए। क्या इस पूरे मंजरनामे को देखकर एक बच्चा भी यह अखल नहीं कर सकता कि मुख्तार बुखारी और शहीद अस्करी रजा की शहादत में किसका हाथ है और दहशतगर्दों को किसने ये मदद फराहम की कि वो इन दोनों अहम अरकीन को शहीद करें।
हमारी कौम बाइल्म कौम है, ये लाइल्मी से कोई काम करना नहीं जानती, हर चीज का इसको पता होना चाहिए। आइए मैं चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन खास तौर पे ये मुंतजर इमाम केस से खास तौर पे ये केस जो है नुमाया हुआ, मुंतजर इमाम केस बहुत मशहूर केस जिसके खिलाफ 11 CID वालों ने 11 झूठे केस कायम किए गए, उस केस की पैरवी मुख्तार अब्बास एडवोकेट कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती हसन अस्करी रजा उसकी पैरवी कर रहे थे, जिसकी पादाश में 23 जुलाई को मुख्तार अब्बास एडवोकेट का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हसन अस्करी रजा को बेइंतहा, मैं इसका आई विटनेस हूँ, کیونکہ وہ پورا کیس میں نے پروسیس کیا ہے. میں نے باقاعدہ افسران بالا سے جسٹس مقبول باقر ایڈمنسٹریٹر چیف جسٹس ایڈمنسٹریٹر جج اے ٹی سی کے سامنے کہا تھا کہ آپ کس کس کی باری آنے والی ہے عسکری رضا کو جب بے پناہ سی آئی ڈی کی طرف سے پیسہ دینے کے برائب کرنے کے سب کچھ ہتھکنڈے آزمانے کے بعد جب کچھ نہ بن سکا تو انہوں نے ہمارے جوڈیشری اور ان کے خلاف عسکری رضا کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر کٹوائی. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایف آئی آر مرڈر کیس کی تھی جس کے تحت ہم نے آرٹری میدان میں پریس کانفرنس کے تحت باقاعدہ والنٹیئرلی عسکری رضا کی گرفتاری دی, جو کہ انتظامیہ نے اور پراسیکیوشن نے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کو بری قرار دیا. اس کے بعد بھی پھر اس کو برائی کیا گیا, اس کے بعد اس کو ہر روز دھمکایا جاتا تھا, طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھی, لیکن وہ اپنے ہر کام میں اٹل اور پابندی سے ڈٹا رہا. اس سلسلے کی گڑی حسینی مشن کا کیس بھی ہے جب وہ سب طرح سے, اور اس میں چودھری اسلم انچارج سی آئی جی کے خلاف جوڈیشل انکوائری کا آرڈر ہو چکا ہے, اور جوڈیشل مجسٹریٹ چودھری اسلم اور چار انسپیکٹرز کو جوڈیشل انکوائری کے لیے باقاعدہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے تھرو کال کر چکا ہے. جب نوبت یہاں تک پہنچی اور عسکری رضا کسی طرح بات نہ آئے کمپرومائز کرنے پر, تو اس کے پیچھے پورا حق مولانا اورنگزیب فاروقی جو قرآن ترجیح میں سپہ صحابہ کے لیڈر ہیں, اور مولانا اورنگزیب ان دونوں کے خلاف ایف آئی آر باقاعدہ لکھ کے 154 دیا گیا, جو اب تک کوئی عمل نہیں کیا گیا. یاد رہے کہ یہ قوم, یہ ملک اس قوم کے خون سے بھی بنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں کے نیچے سے زمین سڑک جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو. اور شہیدوں کا لہو ہمیشہ رنگ لایا ہے, 72 خون جو ہے آج تک انسانیت اس کو نہیں چھپا سکی, تو اب یہ موجودہ شہیدوں کا لہو بھی کسی طرح چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے.